नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रही। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01991295681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया, रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने 2 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 3रा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर 3रा स्थान हासिल किया।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में NCPI को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।